छोटे से बच्चे थे,
किंतु पूर्वजन्म का संस्कार जी मुसलमान कुल में जन्म होने पर भी बच्चे ने कहाँ से सुन लिया, सीख लिया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बचपन से ही करता था। मांस मछली इत्यादि सब मुसलमान लोग जो खाते हैं ये सब कुछ छोड़ दिया, प्याज लहसुन सब कुछ शुद्ध सात्विक रूप में रह करके। बचपन में उसके माता पिता मर गए, इसके बाद में हिंदुओं के संपर्क में आ करके और उन्हीं के घर में भिक्षा मांगने चला जाता, रोटी और चावल जो कुछ मिल जाता उसको लेकर के बढ़ गया धीरे धीरे। और जब बड़ा हो गया और भी अपनी संख्या हरिनाम की बढ़ा दी और अद्वैताचार्य नामक एक महा विद्वान रसिक तत्वज्ञ जो शंकर जी के अवतार हैं सदाशिव के विष्णु के, उनसे भेंट हो गए। उनके पास में रह करके शास्त्रों का अध्ययन करना, कथाओं को सुनना, अपने भावों को व्यक्त करना, और तब से उन्होंने 300,000 हरिनाम करना। 100,000 हरिनाम करने में कम से कम कितना, 8 गंगा खूब यदि अच्छी तरह से करेंगे तो, और जल्दी जल्दी भी करेंगे तो 6 से 1 घंटा तक तो कम निकली होगा, बीच में पानी भी तो पिएगा, नित्य क्रियाएं भी तो हैं, 1 घंटा उसके लिए 100,000 में धर रख लीजिए तो 7 रख लीजिए तो 7 तरीका 21 घंटा यदि कुछ ना करे तो भी लग जाएगा। इसमें सोना भी है, भिक्षा लेकर के आना है, कुछ कथा भी सुनना है, ऐसे ये 300,000 हरिनाम करना आरंभ कर दिया, किसी दिन कम न रहे। उन्होंने कहा अद्वैताचार्य जी आप हमारे पास में शांतिपुर में रहें गंगा के किनारे, तो ठीक है मैं कहाँ रहूँगा, मैं देख लूँगा। तब एक ऐसा गंगा के किनारे में बंगाल में एक ऊंचा सा टीला था, उसमें कुछ मट्टी खोद करके मट्टी ले गए और बाकी रह गया गुफा जैसा, उसमें भयंकर एक सर्प रहता था काला फण वाला विषैला, लोग डर के मारे उधर से नहीं निकलते थे। उन्होंने कहा जी हम यहीं पर रह करके भजन करें, तो लोगों ने शायर भाई आप पागल हुए हैं, आप वहाँ पर सांप काट देगा, तो ठीक है काट देगा, अब आज ना कल तो मरना ही है, वहाँ जा करके जो जो से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम थोड़ी देर में वो सांप निकला और सिर नीचा कर करके लोगों ने देखा थे तो अद्भुत एकदम वहाँ पर शांति हो गई। उन्होंने एक तुलसी का पेड़ वहाँ लगा दिया और रोज उसमें पानी देना, उसकी परिक्रमा करना, बाकी समय वहाँ पर भजन करना, दोपहर हो जाए या शाम हो जाए किसी के घर में गए कुछ मांगा मिल गया खा लिया बस लौट आए, कल के लिए नहीं रखा। सब जगह बड़ा उनका आदर होने लग गया, किंतु देश का उस समय शासन मुसलमानों के हाथ में था, काजी लोग रहते थे और शाहनशाह सम्राट इत्यादि रहते थे दिल्ली के अधीन बंगाल में, उस समय हुसैन शाह नाम का बादशाह था और उसी के अंतर्गत में वहाँ का नवद्वीप का प्रभारी काजी बड़ा उसका पावर था, वो जज के रूप में भी होते हैं, मुकदमों का ये सब का फैसला भी करता था, बड़ा पावरफुल होता था जैसे आज का जज होता है सुप्रीम कोर्ट के इत्यादि के। उसके पास में नालिश गई ये मुसलमान होकर के और भगवान का नाम करता है कृष्ण कृष्ण कहता है, कृष्ण कृष्ण राम राम कहता है, सब मुसलमान लोग इसी के देखा देखी सब हिंदुवानी करने लगेंगे सभी नाम करेंगे, इसलिए इसको अभी ही रोकना अच्छा। अरे बात तो ठीक आता है, काजी ने उसको बुलवाया, देखो रहीम के अतिरिक्त खुदा के अतिरिक्त तुम किसी का नाम नहीं ले सकता है। तो उन्होंने कहा हमने तो सुना खुदा और अल्लाह और कृष्ण भगवान सब तो एक हैं, हाँ ठीक है किंतु खुदा ही नाम लेने से होगा कृष्ण लेने से नहीं होगा, तो आप लोग हिंदुओं को जो हिंदू हैं उनको मुसलमान किस लिए बनाते हैं, तो उनको भी कृष्ण कृष्ण कहने दिया जाए, मुसलमान अपना खुदा अल्लाह करते रहें। उनका धर्म लेकर के और उनको बाध्य किस लिए किया जाता है कि आप उनको कलमा पढ़ाइए और खुदा और अल्लाह कहिए, किस लिए? तो राम और रहीम एक ही हैं, तो एक ही है तो ठीक है, तो मैं मुसलमान होकर के यदि राम रहीम एक ही है तो मैं राम ही राम करता हूँ, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हिंदू लोग होकर के, हिंदुवानी छोड़ करके ये लोग अल्लाह खुदा और करें और ये कलमा पढ़े, तो इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। किंतु मुसलमान कोई यदि हिंदू होकर के उसका राम, इसमें ऐतराज़ है। तो ये तो ऐसे बात हुई। उन्होंने कहा एक बाघ था और एक बकरी थी। बकरी नदी में पानी पीने गई। बाघ ने कहा, जब वो पी रही थी इतने में बाघ आया, अरे इस पानी क्यों पिया, पानी को गंदा किस लिए किया? मुझे पानी को मैंने कहाँ गंदा किया, मैं तो ऊपर से ही पानी पी रही हूँ, अपने दोनों पैरों को ऐसा कर करके मुड़क करके और पी रही है। नहीं ना, तुमने पानी गंदा किया। अरे आप तो ऊपर से आ रहे हैं ना, जिधर से धारा इधर में आ रही है, इधर से तो धारा उधर जाने का कोई प्रश्न नहीं है, आप तो ऊपर की धारा के ऊपर से आ रहे हैं, तो पानी यहाँ से कैसे वो उभर में गंदा? नहीं नहीं, गंदा हुआ, मैं कहता हूँ ना गंदा हो गया। तो ये तो बरजोरी है, सीनाजोरी है, ये तो ठीक नहीं। नहीं नहीं, मैं जो कहता हूँ वही ठीक है, तुमने पानी गंदा किया, लपक करके उसे खा लिया।
तुमने फिर तेरे बाप ने किया।
अच्छा, तुमने नहीं यदि गंदा किया तो तुम्हारे बाप ने जरूर किया होगा, ये तलवार के जोर पर। मैं कुछ नहीं जानता, आप मुसलमान होकर के कभी भी हिंदुवानी नहीं कर सकते। मैं नहीं कर सके, तो हिंदू लोग मुसलमानी कर सकते हैं ना? हाँ, ये कुनार शरीफ की बात है। अच्छा ठीक, किंतु मेरी तो ये प्रतिज्ञा है, मैं कृष्ण नाम नहीं छोड़ सकता, बोटी बोटी काट देंगे। उन्होंने क्या कहा, यद्यपि आप बोटी बोटी काट दें, आग में जला दें, किंतु यह बंदा अब कृष्ण नहीं छोड़ सकता नाम, खंड खंड यदि जाई होय देह प्राण, मैं मर जाऊं, कटी कोटी बोटी काट करके एकदम अलग अलग करके जला दे, जो कुछ भी करता है, मरना तो एक दिन है, किंतु आप कृष्ण नाम, ये आसक्ति है, ये आसक्ति आने के बाद ही होगा, ऐसे नहीं होगा। एक आदमी ने कहा, जैसे तुम्हारी लड़की भजन करती है तो हाँ भजन कर, उसे कह देना भजन करना छोड़ दे। क्यों? यदि गले में माला देखा आज सुना, जैसे वो हरे कृष्ण करते, उसे कोई शादी नहीं करेगा। यदि शादी करना है तो फिर वो ये सब छोड़ झट। लड़की कहिए, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं तो करूँ, पिता माता भाई बंधु ने सबने जोर डाला, अच्छा तो क्या करें, था रहने दो, छोड़। ये आसक्ति हुई? नहीं हुई। आसक्ति कहाँ हुई? मर जाने पर भी मैं किसी की बात नहीं मानी, भगवान का भजन करूंगा, वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। इतनी उसकी आसक्ति है कि उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसे ही हम लोगों की आसक्ति होनी चाहिए। इस तरह से कह रहे हैं, आसक्ति होने पर वो महापुरुष पे जाकर के अब उनकी सेवा करने लगा और नित्य निरंतर 5-7 दिनों तक 10 दिनों तक उनके पास में हरिकथा सुन रहा है, कृष्ण के विविध चरित्रों को सुन रहा है, महाप्रभु के चरित्रों को वो सुनने लगा और वैसे ही अपने जीवन में शुद्ध भक्ति करने की वो, जैसे कि भाव हमारे अंदर में उदित हो जाए। कभी कभी 5-6 दिन तक उनके पास में रहा, इसके बाद महात्मा लोग चले गए, वो वनों में घूमते 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 कभी अपने आप चिल्लाता, हरे कृष्ण भगवान का नाम लेता, राधा रमन हरि गोविंद जय जय और सब कीर्तन करता, एकदम मतवारा सा। और कभी घर में आकर के बहुत सुस्त हो जाए, अभी तक भगवान नहीं मिले, मैं कहाँ करूँ, क्या जाऊँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, एकदम व्याकुल हो उठता। कभी कभी वो गोवर्धन चला जाता, गोवर्धन की परिक्रमा कर रहा, देखा चलते चलते, उसने मन में सोचा, आज यदि हिरण यहाँ पर कुछ मिल गए, यदि देखा जे चौकड़ी भरते जाए, मैं समझ, आज कृष्ण की बड़ी कृपा है, हमारा ये गोवर्धन की परिक्रमा सफल हुई और कृष्ण हमको जरूर मिलेंगे। यदि नहीं मिला तो हताश हो गया। और सचमुच में आगे बढ़ा दिया, देखा क्या 8-10 छोटे छोटे फुदकते हुए हिरण उसके बाएं से दाहिने की तरफ में चले गए या दाहिने से बाएं की तरफ। बड़ा प्रसन्न होकर के साष्टांग प्रणाम किया, अब तो गिरिराज जी की कृपा है, हमको भी मिल जाएगी। कभी किसी दिन उसने देखा जैसे 8-10 छोटे छोटे नंगटे बच्चे खेल रहे हैं, उनके पास में चला गया, उनको साष्टांग प्रणाम किया। कहा जी ये मालूम होता है ये ऋषि महर्षि हैं। उसे कहा अच्छा ये बच्चों ये बतलाओ मुझे भक्त कृष्ण की भक्ति होगी, कृष्ण मिलेंगे। उन्होंने बच्चों ने ऐसा कहा ये कहाँ से ही पागल आ गया क्या, किंतु कोई ऐसी बात कही जो उसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। तो उसने समझा जैसे ये तो ठीक कर, जैसे उसके ये आया जैसे नहीं ये ठीक कर, ये भक्ति हो जाएगी, तुमको कृष्ण मिल जाएगा, उसका अर्थ लगा लिया, बड़ा प्रसन्न हो गया। और यदि कुछ इसमें नहीं का भाव देखा, यदि ऐसा कर दिया तब तो वो उसका मन खराब हो गया। सब विषय में जहाँ जाता है उसकी क्या रहती है भाव, कृष्ण मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कब मिलेंगे, दिन रात अच्छे सभी किसी काम में बस कृष्ण ही कृष्ण। जैसे कंस है ना, कंस की तो भक्ति नहीं, किंतु सब समय देता कि अब कृष्ण आकर के मारे नहीं, कृष्ण अब तो मारे नहीं, अब तो जन्म नहीं ले लिया, अब तो जन्म लिया, राजकाज तो भाड़ में गया, सब कुछ दिन रात उसी की चिंता। ऐसे जिसको आसक्ति हो जाती है ना, आसक्ति का भूत उसके ऊपर में कृष्ण का भूत चढ़ जाता है, कृष्ण के अतिरिक्त और उसको कुछ सूझता नहीं, सभी कामों में ऐसे होने लगता है। कभी 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 मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मिलेंगे, न घर बार सुहाता है, न खाना सुहाता अच्छा लगता है, न पहनना अच्छा लगता है, इसी को कहते हैं विरक्ति। विरक्ति माने क्या, कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ लगता नहीं अच्छा, यह है विरक्ति। उनको किसी चीज का होश नहीं रहता, 5-7 दिन 10 दिन तक स्नान है उनको याद ही नहीं, ये स्नान किया नहीं, कृष्ण के स्मरण में लगे हुए हैं, कृष्ण के कीर्तन में, कभी रोते हैं कभी चिल्लाते हैं कभी कुछ, कभी कभी हंसने लगते हैं, एक झलक कृष्ण की देखा जाकर के एकदम खुश हो जाते हैं, कभी देखा जैसे आकर के फिर अंतर ध्यान हो गए, बस रोने लगता है, इस तरह के उसके बाद उस समय में जबकि स्थिति ऐसी होती है उसके बंधु बंधव जब आते हैं तो कभी कभी चुपचाप बैठ जाता है या बैठ जाती है, तो कहते हैं कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, बंधु बांधव ये कोई काम नहीं करता है, पहले तो बड़ा इसका मन लगता था खूब काम करता था, अब तो इसको किसी काम में मन क्या जाने, चुपचाप सुस्त बैठा रहता है, बुद्धि बिगड़ गई। पास पड़ोस वाले कहेंगे अरे ये तो जड़ हो गया, पहले तो चेतन था अब दुख आता है सुख आता है उसको कोई परवाह नहीं, कायने क्या ये जड़ जैसा ये बैठा रहता है, इसको समझाओ तो ये समझता नहीं है, कुछ करता भी नहीं है, काम भी नहीं देखता, वाणिज्य नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता है, कोई कर्म ही नहीं कर, इसी कायने क्या इसको हो गया। मीमांसा अर्थात तू मीमांसा करके कर्मी लोग वो कहते हैं क्या ये महामूर्ख है, कोई समझ यह भ्रष्ट हो गया है। और ज्ञानी लोग कहते हैं अरे ये तो वहां दाम्भिक है, किसी बात ही नहीं करता, घर में कोई आया उसका आदर जत्न नहीं करता, ये महादाम्भिक हो गया है। किंतु भक्त लोग इसको समझते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु बचपन में जब काशी गए वहां से लौट करके आए तो कृष्ण कृष्ण कहते हुए मूर्छित हो जाते हैं, भूमि में लौटने लग जाते हैं, पढ़ाना लिखाना सब बंद कर दिया, स्कूल में गए पढ़ाने के लिए तो बच्चों ने कहा जे अब पढ़ाइए, कहा जे अब हमको पढ़ाने नहीं आता, तो उनके गुरु के पास में गए, जैसे गुरु जी पहले ये पढ़ाते थे अब नहीं पढ़ाते, कुछ नहीं नहीं पढ़ाना चाहिए, विद्यादान सबसे बड़ा भारी दान है। अच्छा गुरुजी आदेश दिया तब, अच्छा तो पुस्तक खोलो देखो, क माने कृष्ण, ख माने कृष्ण, ग माने कृष्ण, जितने शब्द हैं उनका अर्थ है कृष्ण, सभी ऑल लेटर्स डिनोट्स कृष्ण, क माने कृष्ण, अ माने कृष्ण, आ माने कृष्ण, ई माने कृष्ण, सभी कृष्ण को, सभी चीजें हैं। जितनी सूत्र हैं, जितनी वृत्तियां हैं, जितने उसके टीकाएं हैं, सभी कृष्ण। ये किसकी स्थिति ऐसी है? महाभागवत की होगी। जब ऐसा हो जाएगा तब सभी कुछ वो देखेगा कृष्ण जी। एक मोर पंख को दे करके कृष्ण की स्मृति हो जाएगी, एक चींटी को देख करके भी हो जाएगी। कैसे? देखो तो चींटी किसने बनाई? अच्छा, छोटी सी चींटी दिन भर परिश्रम करती है, ये कैसी अद्भुत है। चींटी को कोई वैज्ञानिक बना सकता है? चींटी से भी छोटी चीजें हैं, बड़ी यंत्र में बारीकी से देखने पर वो दिखते हैं, उनके हाथ पैर हैं, बड़े चलते हैं, कभी कभी हवा में उड़ते हैं। किसने बनाया? उसमें आंखें हैं, नाक है, कान है, समझने की शक्ति है, सब कुछ किसने बनाया? सब चीजें वहीं से पूछ सकते, सभी कुछ। एक यहां पर घड़ी रखी। अच्छा भाई, ये घड़ी किसने बनाया? हमने पूछ, हमने किसे कोई चीज पूछा? मैं तो नहीं जानता। अच्छा देखो तो ये कहाँ मेड इन कहाँ है? उसने कहा मेड इन इंडिया है, या मेड इन जापान है, मेड इन इंग्लैंड है। अब देखो तो ये कौन सी कंपनी है? ये जो कंपनी है उस पर लिखा है। अमेरिका में गया, पूछा जैसे भाई इस नाम की कोई कंपनी है? कंपनी में गया, कंपनी में जाकर के पूछा जैसे ये घड़ी किसने बनाई? इसके अलग अलग पुर्जे हैं, अलग अलगों में, अलग अलग यंत्रों से अलग अलग लोगों में, उसको सब मिला करके एक जगह एकत्र करके ये घड़ी के सब पुर्जों को एक घड़ी। उसी तरह से इस संसार को किसने बनाया, इस घड़ी को किसने बनाया? जिसने बनाया उसकी बुद्धि को कौन दिया? जैसे बनाया बुद्धि को किसने दी? प्रभु ने दिया। उसको आंख नाक कान इत्यादि ये सब किसने दिए? जिस चीज से ये घड़ी बनी है उसके प्रत्येक ऑर्गन को, लोहे को, उसमें शायद हीरे भी होते हैं ना, क्या होता है, ज्वेल्स होते हैं ना, ये सबको किसने बनाया? सब। ये डोरी ये देख रहे हैं, ये कपास से मान लीजिए बनी। कपास को कहाँ से आया? कपास पेड़ से। उस पेड़ को किसने बनाया? इस तरह से ऐसी कोई भी विश्व में चीज नहीं है जो कृष्ण को डिनोट नहीं करती। इसे जितने भी सूत्र टीका अर्थ जो कुछ है, क ख ग, सभी तो अक्षर हैं। अक्षर माने क्या? जिसका विनाश न हो वो कृष्ण के लिए डिनोट करती है। महाभागवतों का ऐसा दर्शन हो जाता है, आसक्ति से ही आरंभ होता है। तो उसको साधारण कर्मी लोग, पास में बंधु लोग कहते हैं, अब तो किसी को प्यार नहीं करता, बंधु को प्यार नहीं करता, बहन को नहीं देखता, भाइयों को नहीं देखता, पिता की सेवा नहीं करता, ये महामूर्ख जाहिर हो, कोई कुछ कहते हैं। सची मां सुन करके लोगों से सुना, ये तो पागल है। किसी ने कहा इसको मृगी रोग हो गया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा जैसे ये तो बेकार का भ्रष्ट आदमी हो गया। सभी लोग कह रहे महा घबरा गई। किसी ने कहा जी इसको नारायण तेल लगाओ, ठंडा हो जाएगा, नहीं तो इसका मृगी रोग है, ये मर जाएगा। एक दिन सुभाष पंडित जी आए, उन्होंने दुखड़ा रहा जी हमारा बेटे को न जाने क्या है, कभी गुमसुम रहता है, कभी हंसता है, कभी बोलता है विवाह भी कर दिया किंतु उसके साथ में वो बात भी नहीं करता, किसी से भी बात नहीं करता। कोई इसको बड़ा घमंडी कहते हैं, कोई कुछ, वहाँ के विद्या पढ़ने वाले थे ना, सब इनको घमंडी कहते थे। जब ये रोने लगी तो उन्होंने कहा जैसे इसको कोई कोई कहते हैं कि मृत रोग है, बड़े बड़े वैद्य लोग आकर के, और जब नहीं, इसको रोग तो लग गया है, कृष्ण प्रेम का रोग लग गया, इसको कृष्ण की नज़र लग गई है, इसको कोई भी रोग नहीं है, ये तो तुम्हारा सौभाग्य है जो ऐसा बेटा तुमने पाया, ये तो करोड़ों करोड़ों में से कभी होता है नहीं, तो ये बड़े सौभाग्य से तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ है। श्रीवास जी के चरण पकड़ करके उनके मैया रोने लगी और बोली यदि आप कहते हैं इसको मृगी रोग हो गया या पागल हो गया है ये, तो आज मैं गंगा में डूब करके मैं मर जाती, आपने आज हमको बचा दिया। महापुरुषों का भाव महापुरुष हुए बिना नहीं समझा जा सकता। जिसको कृष्ण प्रेम का रोग लग गया है उसको संसार वाले कुछ भी नहीं कर सकते, उसको कोई विश्व का कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उसको रख भी ले। इसलिए वो कहते हैं तरह तरह के लोग तरह तरह से कहते हैं उसके संबंध में, समझ नहीं पाते हैं, किंतु भक्त लोग जो हैं उसको समझ करके और उसका जीवन कृतार्थ मान लेते हैं। ये तो हुई आसक्ति। यही आसक्ति परिपक्व जब होगी, परिपक्व माने क्या, और भी गाढ़ी हो जाएगी, तो अपना रंग अलग दिखाएगी। उस समय उसके अंदर में एक शुद्ध सत्व होता है जिसको भाव कहते हैं, रति कहते हैं, उसके अंदर में ऊपर से आती है। कहाँ से आती है? पावर हाउस से। ये पावर हाउस पांच हैं, एक ही सेंटर में पांच पावर हाउस बने हैं। मूल जो आती है बिजली ना, करंट वहाँ पर तैयार हो रहा है, वो तो एक ही प्रकार का है, किंतु वहाँ पर मेन रूप में पांच पावर हाउस हैं। एक का नाम है शांत, एक का है दस्य, एक का नाम सख्य, एक का नाम वात्सल्य, और जो सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली और सबसे उसी से ही जो बिजली आती है उनमें पास होकर, उसको कहते हैं कुंभक। ये भावावस्था में वहाँ पावर हाउस से, ये पावर हाउस कहाँ पर है? जसोदा जी और नंद बाबा वात्सल्य नरस के पावर हाउस हैं। सिदाम सुबल इत्यादि उनके जो सखा हैं वो सख रस के पावर हैं, पावर हाउस। और ललिता विशाखा इत्यादि जो हैं ये मधुर रस के, इसी से सभी में जाता है, इसलिए ये पावर हाउस सबसे बड़ा शक्तिशाली ये है। तो वो जब इसको लोभ होता है और जो भक्ति करते 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 वहाँ से ये पावर भक्त के हृदय में आता है। कैसे आता है? भक्त की कृपा से, या भगवान, साधारण भक्त नहीं, उत्तम महाभागवत हो उसकी कृपा से ही आएगा। जिसके अंदर में प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, वो दूसरों को क्या देगा? इसलिए प्रेम या भाव उस समय आएगा जबकि हम महाभागवत हो जाएंगे। उसके अंदर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने आप आ जाती हैं, उसमें गुण, क्या गुण आएगा? शांति, अव्यर्थ काल तंग, विरक्ति, मान शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा, नाम गाने सदारुचि, आसक्ति तद्गुणाख्याने, प्रीति तद्वसत स्थले इत्यादो भावा अंकुरे जने। जिसमें प्रेम का अंकुर भाव उत्पन्न हो जाता है, जिसको अभी बतलाया शक्ति परिपुष्ट होने पर उसे भाव या रति का, उसके ये सब लक्षण हैं। ये भी लक्षण कैसे हैं? ऊपरी, बाहरी, भीतर वाला नहीं। भीतर वाला तो भाई वही जानेगा जिसके अंदर में वो भाव है। कभी कृष्ण के लिए रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं? प्रेम की वजह से। प्रेम की ये तरंगे हैं जो ऊपर से ये दिखती हैं, कैसे कोई प्रेम की तरंगों में बहता हुआ रो रहा है, कृष्ण के विरह में तड़प रहा है, ऊपर से ये आंसू दिखेंगे तब कहेगा ये रो रहा है। ये रोना भक्ति नहीं है, किंतु इस रोने का संबंध चुके उस अंतर की भक्ति से है, प्रेम से, इसलिए ये रोना उसका क्या है, तटस्थ लक्षण नहीं, मैंने भाव, अनुभव, अनुभव, अनुभव माने भाव के पीछे पीछे जो शरीर में जो क्रियाएं देखी जाती है उसको अनुभव कहते हैं, इसको संचारी भी आप कहते हैं या व्यभिचारी। जब हृदय में इतना प्रेम होता है, कृष्ण की सेवा में कोई तन्मय हो जाता है, उस समय में यहाँ पर जड़वत दिखता है, किंतु ये जड़ कहाँ हुआ है? आत्मा से कृष्ण की सेवा में निमिष होने से इंद्रियां सारी शरीर की स्तब्ध हो जाती हैं। तो उसको कहते हैं ये प्रेम का अनुभव क्या है, अष्ट सात्विक में से पहला स्तंभ। कभी कभी कृष्ण के विरह में रोता है, उस समय अश्रु ये आंखों से देखा जाए। इसी तरह से अष्ट सात्विक विकार हैं, अनुभव और हैं, संचारी भाव सब और हैं, ये सब लक्षण कुछ कुछ दिखाई पड़ेंगे उसमें। और बाहरी रूप में क्या देखा जाएगा? अश्रु, पुलक, कंप, इसके अतिरिक्त भी शांति। शांति माने कोई भी चीज जो मन में अशांति पैदा करने वाली है, क्षोभ उत्पन्न, क्षोभ जानते हैं? क्षोभ माने क्या? किसी ने गाली दे दिया, मन खराब हो गया, कोई भी सांसारिक कारण उसके चित्त में क्षोभ नहीं उत्पन्न कर सकता। जैसे पानी है ना, थोड़ा सा पानी है उसको लकड़ी से चला दो तो नीचे का मट्टी ऊपर आकर के सब खूब धो करके गंदा हो गया। जिसको ये भाव उत्पन्न हो गया रति कृष्ण में हो गई है, संसारी कोई भी चीज़ क्रोध होने का कारण उपस्थित होने पर भी, कोई शत्रुता करने पर भी, कोई कुछ करने पर भी उसका चित्त एकदम शांत प्रशांत बना रहेगा, तब उसको समझो जी इसको रति हुई। यद्यपि ऊपर का लक्षण शांति अव्यर्थ कालोत्तंग, भगवान के चिंतन मनन स्मरण कीर्तन के अतिरिक्त और सब जो काम है वो कैसे हैं? यदि भगवत भक्ति से उसका संबंध नहीं है तो कहते हैं व्यर्थ है, किंतु उसका सब सब 24 घंटा कैसे जाता है? अव्यर्थ। सोते नहीं हैं? सोते हैं। तो उनका सोना किस लिए है? मैं सवेरे उठ करके जल्दी से भोर में 4 बजे ठाकुर जी को जगाऊंगा, जगाऊंगी, ठाकुर जी के लिए आरती करूंगी कि करूँगा, ठाकुर जी के लिए रसोई बनाऊंगा, तबीयत खराब ना रहे, इसलिए सोता। इसलिए सोना किस लिए हुआ? भगवान की सेवा की। इसलिए उसका प्रत्येक दिन चर्चा, प्रत्येक उसका पद विक्षेप जो कुछ होगा भगवान के लिए होगा। इसलिए अव्यर्थ का, या तो कभी कीर्तन करेगा, कभी वैष्णव आ गए तो उनकी सेवा करने लगा, कभी ठाकुर जी की रसोई बनाने लग गया, कभी वो रसोई हो गया फिर ठाकुर जी को भोग देने लग गया, आरती में लग गया, कीर्तन करने में लग गया। इसी तरह से कभी न किसी न किसी रूप में 24 घंटा सेवा। कौन? जिसको ऐसा हो जाता है वो दूसरों के लिए ऐसा संभव है। अव्यर्थ कालोत्तंग विरक्ति, भगवान के कथा श्रवण कीर्तन के अतिरिक्त और ये जो चीजें हैं उसको सब कैसा लगता है? अव्यर्थ का विरक्ति, उसे विरक्ति हो जाती, उस काम में रुचि नहीं लगती जिसमें भगवान का कोई भाव नहीं है, मन ही नहीं लगता। जितना भी प्रतिष्ठा का काम हो, जितना भी जो कुछ हो, अर्थ इत्यादि, अब उसे विरक्ति है। अब किस काम में उसकी रुचि जाती है? भगवान की कथा कहीं हो रही है, भगवान का नाम हो रहा है, स्वयं भगवान का नाम कर रहा है, भगवत संबंधी जितने कार्य हैं, दूसरे काम में से विरक्ति। विरक्ति मान शून्यता, जो ही ये होगी तो उसको अब मान की अब स्पृहा नहीं, मान सो काटने के लिए दौड़ेगा, मान की इच्छा नहीं करेगा, दूसरों को बल्कि सम्मान देगा, अपने सम्मान से घृणा हो जाती है। किस लिए? मान की चीज हमारे अंदर में है क्या? जो ये नहीं जानता जो कल मर जाएगा, भगवान में भक्ति नहीं हुई, प्रेम नहीं हुआ, मेरे जैसा पदार्थ और कोई नहीं, दुर्भाग्य और कोई जन्म नहीं। हम लोग का जीवन परतंत्र है, अभी किसके? माया के परतंत्र है। कल क्या होगा हमको कुछ पता नहीं, पीठ के पीछे क्या है उसको पता नहीं, अपनी आंखें काली है गोरी है कैसी है आंखें नहीं देख सकती, कोई विपत्ति आ जाए, 2-4 बटट्टी आ जाए, देखिए ये शक्ति एनर्जी कहाँ चली गई, और सम्मान सम्मान कैसा, दम्भ कहां से, अहंकार पाखंड, ये सब उसका नहीं रहता है, बहुत दिनहीन कोमल मधुर बन जाता है। अगर तकाल विरक्ति मानु शून्यता, आशा बंध जाती है। क्या? भगवान मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, निश्चित रूप में मिलेंगे, अब उसको संदेह नहीं रह जाता। किसको? जिसको रति हो गई, अब मिलने वाले हैं। जैसे एक पेड़ है, हमने एक पौधा लगाया, उसमें जब फूल आ गए तो हम, अब फूल जब आने लग गया ना, अब समझे कि अब इसमें फल लगेंगे जरूर ना, किसी बेल में फूल आ गए फल भी लगेंगे। ये फूल के समान है, कौन? विकसित फूल के समान में ये भाव रति है, अपने सुंदर सुगंध से कृष्ण को भी आकृष्ट कर देता है, ऐसा ये भाव या रति है जिसके अंदर में उत्पन्न हो। जगत के लोग सब उसको प्रशंसा देने लगते हैं और वो प्रशंसा से भागता जाता है, जैसे कि माधवेंद्रपुरी कहीं जा रहे थे, जाते जाते कहीं शाम को रात में पहुँचे, मंदिर में पहुँचे, दर्शन कर रहे थे, बड़ी सुगंध आई जो भोग लगा था, वो क्या चीज थी? खीर था। कैसा खीर? चावल नहीं लगाया, दूध को ही जमा ये घना करते 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 और उसमें कुछ किशमिश मेवे और उसमें कर्पूर और सुगंधी चीज़ें देकर के बड़ी रसाल बड़ी सुंदर खीर बनी। जब उनके सुगंध आया, जब भोग उठ गया तब इनको सुगंध आया, इतनी बड़ी मधुर सुगंध आया। मैं यदि चख करके देखता तो अपने ठाकुर गोपाल जी के लिए इसका ऐसा ही बना करके भोग लगाता। फिर कहा अच्छी अच्छी ये तो बहुत हमारा उसके प्रति भोग की बुद्धि आई, ये मैं इसको टेस्ट करूं। बहुत ही ये करके अनुताप करने लगे और जा करके हरिनाम करते 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 आधी रात तक के बाद में थोड़ी सी झपकी सी आई। इतने में 9 बजे की 8 बजे ठाकुर जी का घर बंद करके दरवाजा भोग लगा करके भोग को उतार करके और पुजारी चला गया अपने घर में। मंदिर के पास ही उसका घर है। ठाकुर जी बोले जैसे देखो तुम उठो उठो उठो, हमारा एक भक्त आया है, तुमने कितनी खीर लगाई थी?
12
मिट्टी के बर्तन में तुमने खीर की भूख लगाई थी, तो उसमें हमने एक चुरा करके अपने कपड़े में ढक दिया है और बाकी के तुम उतार ले गया। तुमने समझा कि हम 11-12 ले आए हैं, किंतु एक हमने चुरा करके रख दिया है, वहाँ पर रखा है। 11 तो तुमने बांट दिया, खा लिया। अब तुम जाओ मंदिर को खोल करके उसको निकाल करके ले आओ और कहना जी माधवेंद्रपुरी कहाँ है, कौन है, और यदि कहेगा जी हाँ मैं हूँ तो उसको दे देना। ठीक 12 बजे वो आकर के देखा, अरे भाई मैंने तो सब ये हटा ली थी। मंदिर खोल करके देखा जी ठाकुर जी के कपड़ों के नीचे वो पड़ा था, बरसों से उठाया, बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसा भक्त आया कोई उत्तम कोटि को जो भगवान हमको जगा करके और उसको खुश देने के लिए कह रहे हैं। जा करके बाजार में गया, वहाँ पर सुन्न सान्न सब ये चुपचाप बैठ करके हरिनाम कर रहे हैं, माला पर हरे कृष्ण और चिंतन कर रहे हैं। इतने में आवाज़ आई, अरे माधवेंद्रपुरी कहाँ कोई है, माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी। बोले भाई मैं माधवेंद्रपुरी। अच्छा सन्यासी का नाम है माधवेंद्रपुरी। ठाकुर जी ने तुम्हारे लिए ये भोग अपने कपड़ों में चुरा करके रखा था, तुम्हारे खाने की कुछ इच्छा हुई थी? तब मेरी तो हुई थी, तो तुम्हारे लिए चोरी करके रखा। आँखों से आंसुओं की धारा गिरने लगी, प्रभु ने हमारे लिए हमारी इस इच्छा को पूर्ण करने लिए चुरा करके रख लिया। इसके बाद में वो आदमी पुजारी दे करके चला गया, क्योंकि उसको नींद आ रही थी क्यों जोर से, किंतु समझ गया कि ये महापुरुष हैं, सवेरे इस चीज़ को आउट करेगा जैसे ये कोई महाभक्त है। चला गया, सो गया और ये उन्होंने प्रसाद को थोड़ा सा टेस्ट करके इतना प्रेम से रोने लगे, अधीर हो कृष्ण कृष्ण कहने लगे। वो ठाकुर जी की ऐसी करुणा जो खुद अपने आप चुरा करके और हमारे लिए रख दिया। सोचा जैसे ये कल बात फैलेगी और लाखों लोग हमारे दर्शन के लिए आएंगे और कहीं ये सिद्ध महात्मा है, कोई कह जाए हमको बेटा दो, कोई कह जाए धन दो, कोई कहेगा दौलत दो, कोई कुछ कहेंगे। रात में ही प्रशंसा की जरूरत नहीं, यहाँ से भगो, प्रशंसा सांप है काटतेगा। बस रात ही रात एकदम जगन्नाथ जी चले गए, वहाँ से काफ़ी दूर है, वहाँ रहे। दूसरे दिन उनको लोग जब उनके महिमा चारों तरफ में फैली, देखा जी वो तो चला गया, खोजते खोजते लोग थक गए किंतु मिले नहीं। इस प्रकार से प्रशंसा से दूर रहेंगे। अब तब से उनका नाम हो गया क्या, खीर चोरा गोपीनाथ। पहले नाम था गोपीनाथ, अब करीब करीब हो गया, ये कितने दिन की बात, बहुत दिन की बात, करीब करीब 5-6 हजार वर्ष पहले की, 5-6 हजार नहीं कृष्ण के बाद तो महाप्रभु हुआ, ये 1000 वर्ष की बात होगी। तब से गोपीनाथ कोई नहीं कहता, खीर चोरा कहते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोराने वाले। ऐसे ही उसमें प्रतिष्ठा से कोई रुचि नहीं रहती, मानो शून्यता, आशा बंध, समुत्कंठा। भगवान जरूर मिलेंगे किंतु चुपचाप नहीं हो जाता, समुत्कंठा, कब मिलेंगे कब मिलेंगे कब मिलेंगे, इस तरह से। और सदा वैसे कर्मों को करता है जिससे कि भक्ति मिले, बढ़े और कृष्ण मिले। ऐसे स्थान में रहेगा जहाँ वृंदावन के लिए तड़पता रहेगा, कृष्ण की जहाँ लीला भूमि है वहाँ पर रहेगा और दूसरी जगह नहीं। नाम लेने में बहुत रुचि रहेगी, नाम में भी रुचि रहेगी और क्या, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्वशस्ति गुणात्, भगवान का गुणान बात करने में ऐसा जी उसे छोड़ेगा नहीं। हमारे प्रभुपाद जी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, एक बच्चे को देखा बस बुला लिया, प्रेम से बैठ गया, हरी कथा कहने लगे। होते होते रात हो गई, भोजन का समय आया, 10-5 लोग बैठ गए, शिष्य लोग करें हट जाओ हट जाओ हट जाओ, नहीं तो ये बोलेंगे फिर तो सामने नहीं जाएंगे क्योंकि वो बिगड़ जाएंगे हरी कथा में बाधा देने से, इसलिए सबको क्या करेंगे इशारे से उठाएंगे, नहीं मानेगा तो एक आदमी को बुला करके चुपचाप कान में कंजे से यहाँ सब जाएंगे तो प्रभुपाद रात भर जगे रह जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, प्रभुपाद तो छोड़ेंगे। इस तरह से जब तक कोई रहेगा, एक दीवार भी रहेगी तो उसको कथा बोलेंगे, कथा बोलना ही उनका धर्म हो जाएगा, उसमें रुचि हो जाएगी, आसक्ति हो जाएगी। इस तरह से जब प्रेम का ये पहले जो आभास उत्पन्न होता है जिसको रति कहते हैं, ये उत्पन्न पर ये सब लक्षण हो जाएंगे। ऐसे लक्षणों से सबको मिला करके देखो तो समझो जी ये महाभागवत महापुरुष है। अब इनकी भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के भाव में ये रति उत्पन्न हो गई है। अब जल्दी से इनका शरीरांत होगा और ये दूसरे जगत में जा करके कृष्ण के परिकरों का संग पा करके बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त होगी। भाव होते ही उसको कहा जाता है स्वरूप सिद्धि, और शरीर को छोड़ करके मन को छोड़ करके जब ब्रज में या कहीं पर जन्म ग्रहण करता है, भक्तों का संग पाता है, तो उसको कहते हैं वस्तु सिद्धि। वस्तु सिद्धि के बाद में प्रेम स्नेह और आगे बढ़ जाता है, ये आज यही तक है। ऐसे ही बनने की चेष्टा करें, ऐसे महात्माओं को देख करके, ये हमारे कास्ट क्रीड हमारी समिति के हैं, ये मत विचार करो।